ओम शांति। गांव का एक किसान बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि सत्संगों में उसने सुना कि संसार को दुख देने वाला जो है, संसार को दुख धाम बनाने वाला जो है, संसार में विकार फैलाने वाला जो है, वो शैतान है। और जैसे ही उसे ये पता चला किसी प्रवचन में, क्रोध से भर गया और अपनी कुल्हाड़ी ली और निकल पड़ा उस शैतान की तलाश में जिसने इस संसार को नरक बना दिया। इस संकल्प के साथ कि यदि वो शैतान मिल गया तो उसे मार दूंगा और ये संसार फिर से सुखमय हो जाएगा। संसार के प्रति ऐसी भावनाएं मन में जागृत हुई और वो निकल पड़ा और चलते चलते उसे शैतान बीच में मिल गया और उसने उससे पूछा, क्या तुम ही शैतान हो? उसने कहा, हाँ मैं ही हूं। क्या तुमने ही इस संसार को नरक बनाया है? उसने कहा, हाँ मैंने ही। किसान ने कहा, खबरदार, मैं तुम्हें मारने आया हूं। और वो अपनी कुल्हाड़ी ऊपर करता है, शैतान उसके चरणों में गिर पड़ता है, मुझे माफ कर दो, मेरा भी परिवार है, कुटुंब है, बीवी है, बच्चे हैं, उनका क्या होगा, कुछ तो रहम करो, मुझे तुम छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें हर मास सोने के सिक्के दूंगा। किसान रुक जाता है, अपना दुखी परिवार उसे याद आता है, अपनी झोपड़ी याद आती है और वो मान जाता है, ठीक है, हर मास सोने के कुछ सिक्के घर पहुंच जाने चाहिए। और वो घर चला जाता है, हर मास मंथली पेमेंट आने लगती है, पहला मास सोने के सिक्के आते हैं, दूसरा मास, तीसरा मास, चौथे मास में कोई पेमेंट नहीं आती। तो किसान बहुत क्रोधित हो जाता है और फिर से निकल पड़ता है अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस शैतान का सामना करने। और शैतान उसे मिलता है, परंतु इस बार शैतान ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा है। वो शैतान से पूछता है, क्या तुम अपना वादा भूल गए? क्या तुम्हें मेरी कुल्हाड़ी याद नहीं? वो शैतान कहता है, मुझे तुम्हारी कुल्हाड़ी का कभी भी भय नहीं था और अब तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। पिछली बार डरा था वो तुम्हारी नियत से, पिछली बार जो डरा था, जो तुम्हारे अंदर कामना थी, भावना थी विश्व की, विश्व के प्रति, उससे डरा था, तुम्हारी कुल्हाड़ी से नहीं। तुम में जो सच्चाई थी उससे डरा था, तुम में जो शुभ चिंतन था संसार के प्रति उससे डरा था, परंतु अब तुमसे डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि अब तो जो तुम आए हो वो स्वार्थवश आए हो। पिछली बार जो आए थे वो संसार के लिए आए थे और इस बार जो आए हो वो अपने घर के लिए आए हो, इसके लिए मैं अब तुमसे नहीं डरता। तलवार नीचे करो, नहीं तो तुमको ही खा जाऊंगा। तो जहां शुभ चिंतन है, जहां स्वचिंतन है, और जहां व्यक्ति शुभ चिंतक है तब उसमें शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है, और माया वहां कुछ नहीं कर सकती। परंतु जब व्यक्ति स्वार्थी है, अपने ही बारे में सोच रहा है केवल, अपने ही सुख दुख में डूबा हुआ है, वहां वो निर्बल है, शक्तिहीन है, और वहां माया शक्तिशाली है। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको देख रहा है, बाप दादा किसको देख रहा है, बच्चों को, कौन से बच्चों को, जो विशेष है, विशेष है। माताओं को कहा, चार दीवारों में थी, अब विश्व की मालिक बन रही है। चरणों की दासी थी, अब सिर का ताज। हाथ खाली थे, अब मालामाल। ऐसे विशेष बच्चों को बाबा मिल रहे हैं, तो भगवान मिल रहे हैं। God selected, God elected, God chosen बच्चों को, भगवान के द्वारा जिनका चयन हुआ है, भगवान ने जिनको चुना है, पसंद किया है, उठाया है संसार की भीड़ से कि ये मेरे काम के हैं, और यही वो है जो मेरा काम कर सकते हैं। बड़ी गहरी मुरली है, ऐसे ऐसे सूक्ष्म राज और गहरे राज मुरली में है। सबसे पहले एक त्रिकोण बनाएंगे, सबसे ऊपर, ऊपर का कोण शुभ चिंतक, उसके दो आधार, एक कोना स्वचिंतन और दूसरा कोना शुभ चिंतन। शुभ चिंतन, स्वचिंतन, ऊपर शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतक बनने के लिए क्या क्या किया जाए, इस पर सारी मुरली है। तो इस मुरली को 10 भागों में विभाजित करेंगे। शुभ चिंतक बनने का आधार, सबसे पहली पॉइंट, दो आधार जो बताए, स्वचिंतन और दूसरा शुभ चिंतन। यदि विश्व के प्रति शुभ चिंतक बनना है, आज तक इतिहास में सबने ये बताया शुभ चिंतन करो तो शुभ चिंतक बनेंगे, परंतु किसी ने ये नहीं बताया स्वचिंतन करो, क्योंकि स्व की ही खबर नहीं थी, तो बताएंगे कैसे। स्व क्या है वही किसी को पता नहीं था, तो बताएंगे कैसे। इसलिए ये नया डायमेंशन, एक नया आयाम विश्व सेवा में बाबा ने जोड़ दिया है। जो स्व का चिंतन करता है, और स्व का चिंतन करने के लिए सबसे पहले तो स्व क्या है उसे जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात मुरली की, विश्व चिंतक, शुभ चिंतक यदि बनना है तो अपने अंदर दो चीजें लानी पड़ेगी। कौन सी? स्वचिंतन। जैसे दूध को यदि दही बनाना है तो किसी निर्जन स्थान पर रखा जाए, एकांत में, यदि उसे हिलाए डुलाए तो शायद न बने। उसी तरह अध्यात्म के राही को स्वचिंतन के लिए बीच बीच में मौन में और बीच बीच में एकांत में जाना बहुत आवश्यक है। कोठरी, मुरलियों में शब्द प्रयोग आता है कई बार, जैसे वो भक्त लोग कोठरी में जाते हैं, जैसे वो पादरी लोग एकांत में घूमते हैं और एक क्राइस्ट नन बट वन की याद करते हैं, वैसे तुम भी बीच बीच में एकांत में जाओ। तो सबसे पहली बात, यदि शुभ चिंतक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वचिंतन। और दूसरी बात, शुभ चिंतन। दूसरी पॉइंट, स्वचिंतन क्या है? बाबा ने कहा, एक पहेली है मैं कौन की। जैसे बाप और दादा के लिए जो है जैसा है उसे जैसा वैसा ही जानना और मानना ही यथार्थ जानना है, वैसे मैं जो हूं जैसा हूं उसको यथार्थ जानना और मानना, यह है स्वचिंतन। और मैं कौन हूं उसकी दो परिभाषा है, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप में मेरा क्या स्वरूप था, अनादि स्वरूप परमधाम में मैं कैसी थी और सतयुग में मैं कैसी थी, उस स्वरूप में स्थित होना, जो हूं जैसा हूं उस स्वरूप में स्थित होकर चलना, यह है स्वचिंतन। स्वचिंतन चार बातें नहीं है, मैं पुरुषार्थी हूं यह स्वचिंतन नहीं है, मैं कमजोर हूं यह स्वचिंतन नहीं है, मैं मायाजित नहीं हूं यह स्वचिंतन नहीं है, मैं सफलता नहीं पा सकती यह स्वचिंतन नहीं है, ये चारों ही बातें स्वचिंतन नहीं है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि हमसे नहीं होगा, बहुत युद्ध कर लिया, बहुत माया को परास्त करने की कोशिश की, परंतु माया ऐसी है कि बहुत शक्तिशाली है, विकार इतने सूक्ष्म है कि जब जब सोचा कि आज इस विकार को जीत लिया, उसी विकार ने उसी रात उसी दिन सूक्ष्म में आक्रमण किया और हम गिर गए। स्वचिंतन अर्थात मैं ब्राह्मणात्मा शक्तिशाली हूं, स्वचिंतन अर्थात देह और देहभान की रचना से कोई आकर्षण नहीं, स्वचिंतन अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। तो मुरली की दूसरी पॉइंट, स्वचिंतन क्या है? और जैसे कहा, स्वचिंतन के लिए एकांत चाहिए और मौन चाहिए, और स्वचिंतन के लिए अपने दो स्वरूपों में स्थित होना है, एक परमधाम का स्वरूप, एक सतयुग का स्वरूप। और ये केवल अमृत वेला और नुमा शाम नहीं, बीच बीच में सारे दिन भर ड्रिल होने चाहिए, एक एक घंटे में बीच बीच में, जहां पर आत्मा निकल कर सीधा परमधाम चली जाए, मैं निराकार हूं, मैं निर्लेप हूं परमधाम में, मैं निरसंकल्प हूं, मैं निराधार हूं, मैं निज स्वरूप में स्थित हूं, मैं निर्वाण हूं, मैं निर्बंधन हूं, ये परमधाम के संकल्प है। वहां जाना और उस धाम में स्थित हो जाना, फिर नीचे आना, फिर जाना, और सतयुग के साथ स्वरूप, ये परमधाम के साथ स्वरूप थे, सतयुग में मैं आत्मा सत्वप्रधान हूं, 16 कलाओं से युक्त, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मैं आत्मा संपूर्ण डबल अहिंसक, मैं आत्मा आत्माभिमानी, परम सतयुग में, सतयुग के भी स्वरूप है, उनको याद करना है, सतयुग में मैं कैसी थी, सर्व गुणों से संपन्न थी, 16 कलाओं से युक्त थी, संपूर्ण अहिंसक थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, 7 सतयुग के रूप, जाना वापस आ जाना, कुछ बातें कुछ पॉइंट्स बुद्धि में फिक्स हो, जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए राउंड फिगर लिया जाता है, जैसे मेडिकल में बॉडी का जो पीएच होता है 7.35 से 7.45, परंतु सारे क्रिटिकल केयर के कैलकुलेशंस में 7.4 लिया जाता है, उसी तरह ज्ञान बहुत बड़ा है, इसलिए कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स फिक्स हो, ताकि उसका रोज 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 अभ्यास करे, और वो जब अभ्यास पक्का हो जाए तो उसमें फिर नई पॉइंट्स ऐड की जाए। तो सबसे दूसरी बात, स्व चिंतन क्या है? तो स्व चिंतन अर्थात अपने अनादि स्वरूप में और अपने आदि स्वरूप में स्थित हो जाना। जैसे ही हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे जापान का एक बहुत बड़ा पराक्रमी शूरवीर योद्धा, जिसे सामुराई कहते हैं, जिसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और जिसके सामने शत्रु टिक नहीं सकता था, और वो एक दिन अपने घर आता है, अपने कमरे में देखता है कि उसके बिस्तर पर एक चूहा है बैठा हुआ, और वो चूहे की तरफ देखता है तो चूहा भी उसकी तरफ देखता है। चूहे की इतनी हिम्मत, वो सोचता है इतनी मजाल कि मुझे घूरता है, उसे डराने की कोशिश करता है, परंतु चूहा और जोर से घूरता है, अपनी तलवार निकालता है और बिस्तर पर पटकता है, चूहा कहीं और, फिर से तलवार लेकर उस चूहे के पीछे भागता है, क्योंकि उसने कभी हारना नहीं सीखा था, क्योंकि उसके अहंकार को बड़ी चोट थी कि एक चूहे से मैं हार गया, विश्व प्रसिद्ध हूं, कितनों को धूल चटा दी, चूहे से कैसे हारूं। चूहे को मारने के लिए तलवार चलाता है, तलवार के चार टुकड़े हो जाते हैं, रात भर युद्ध चलता है, चूहा अभी भी शक्तिशाली है, सुबह थक जाता है, किसको बताए कि चूहे से हार गया, अपने अंतरंग मित्रों के पास जाता है, कहता है मैं क्या करूं। मित्र कहते तुम भी बड़े अजीब हो, चूहे को मारने के लिए तुम खुद लड़ गए, इसके लिए बिल्ली को लाना चाहिए। तो बिल्लियों की समाज में खबर दी जाती है कि जो सबसे श्रेष्ठ बिल्ली होगी वो लाई जाए, और बिल्ली में भी जो सबसे श्रेष्ठ योद्धा बिल्ली थी वो आती है, उसके गले में पट्टा बांध कर लाया जाता है और उसको छोड़ा जाता है, परंतु वो बिल्ली जैसे ही उस चूहे को देखती है, चूहा अभी भी बिस्तर पर बैठा हुआ घूर रहा है, बिल्ली डर के बाहर आ जाती है, वो योद्धा परेशान हो जाता है, अब क्या करे, ये कोई साधारण चूहा नहीं, मैजिकल माउस है, शायद कोई दैवी शक्ति या इसमें है, इसलिए इतना शक्तिशाली है। राजा तक बात जाती है, राजा के पास जाता है, राजा से कहते हैं आप ही कुछ करो, राजा कहता है मेरे पास मास्टर कैट है, बहुत परम शक्तिशाली बिल्ली, वो ले जाओ, पर एक शर्त है, पट्टा नहीं बांधना और घर के बाहर छोड़ देना बस। और राजा की बिल्ली जाती है घर के बाहर घूमती है, और थोड़े ही देर के बाद चूहे को पकड़कर बाहर ले आती है, वाह वाह होती है राजा की बिल्ली की। पत्रकार आते हैं, पूछते हैं क्या कारण है, क्या राज है, कैसे आपने मार दिया उस चूहे को, वो कोई साधारण चूहा नहीं था। बिल्ली कहती है इसमें सीक्रेट वगैरह कुछ नहीं है, मैं बिल्ली हूं, वो चूहा हूं, बस और क्या चाहिए, मैं अपने स्वरूप में जैसे ही स्थित हूं मैं शक्तिशाली हूं। इसके पहले जो बिल्ली थी वो कमजोर थी, क्योंकि वो अपने आप को शायद नहीं जानती थी, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं, मुझे पता है मैं बिल्ली हूं और वो चूहा है, इसलिए मैं शक्तिशाली हूं। जैसे ही आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाती है, अनादि और आदि स्वरूप में, जैसे ही ब्राह्मण स्वरूप में और शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होती है, आत्मा शक्ति बनती है और माया हार जाती है। क्या सीक्रेट है? सीक्रेट कुछ भी नहीं है, सारी गड़बड़ स्वयं को भूलने से हुई है। आत्मविस्मृति दुखों का कारण है, तो आत्मस्मृति सुखों की चाबी। ये दूसरी पॉइंट। तीसरा, जैसे बाप श्रेष्ठ है वैसे मैं आत्मा भी श्रेष्ठ हूं। स्वयं को किस स्वरूप में स्थित करना है। स्वचिंतन अर्थात जैसे वो श्रेष्ठ है वैसे मैं भी श्रेष्ठ हूं। जो जो उसमें है वो मुझ में है। परम धाम में एक दृश्य बनाना है कि वो सागर है, मैं आत्मा उस सागर में डूब रही हूं, उस सागर की अलग अलग परतें हैं। वो ज्ञान का सागर है, मैं आत्मा उस ज्ञान के सागर में डूब रही हूं। जैसे जैसे अंदर जा रही हूं वो ज्ञान मुझ में समा रहा है। दूसरी परत पवित्रता का वो सागर है, उसकी सारी पवित्रता मुझ में आ रही है। कब तक ये ब्रह्मचर्य का संघर्ष? जरूर कोई और मार्ग होना चाहिए कामचित बनने का। इंद्रियों के रस जो खींचते हैं, इंद्रियां जो चेतना को आंदोलित करती है, जरूर खाली बैठी है। विकारों का एक सूक्ष्म कारण है फुर्सत। विकार क्यों आते हैं? फुर्सत बहुत है आत्मा के पास, बिजी नहीं है। जैसे छोटा बच्चा यहां आ जाए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, अपने ही शरीर के अंगों के साथ खेलता है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। यहां आने के बाद इस कैमरा की जब तक हर बटन को ना दबा दे उसे चैन नहीं। खाली है वो, उसी तरह मन भी खाली है, कुछ ना कुछ करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। जब उसके पास कुछ भी नहीं, इसलिए आकर्षण विकारों की तरफ होता है। जब उसके पास ध्येय है, लक्ष्य है, इन सब चीजों से वो छूट जाता है। घंटों फोन पर बात करते रहते हैं, यदि अभी अभी ट्रेन छूट रही है तो कौन बात करेगा? टाइम है, फुर्सत है। ये फुर्सत ही विकारों की जड़ है। दूसरा परत पवित्रता, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, शक्ति। मैं उस शक्ति के सागर में डूब रही हूं, उसकी अनंत शक्तियां मुझ में आ रही है, उसकी अनंत पवित्रता मुझ में आ रही है। जो शक्तियां उसमें है वो मुझ में है, जो वो है वो मैं हूं, ये समान। तो शुभ चिंतक अर्थात जैसे बाप श्रेष्ठ है वैसे मैं भी श्रेष्ठ हूं। इसमें बिजी कर देना है स्वयं को, क्योंकि एक ब्राह्मण आत्मा जो तीव्र पुरुषार्थ कर रही है उसमें भी विकारों का आकर्षण होने का कारण है अकेलापन, खालीपन, अंदर रिक्तता। जब अचानक आ जाती है 12 घंटा सेवा की, 16 घंटा सेवा की, उसके बाद में खालीपन, कोई भी लक्ष्य नहीं, अपने आप डिजिटल अट्रैक्शंस खींचते आत्मा को जो हरेक के हाथ में है, क्योंकि बुद्धि खाली है। खाली है अर्थात सेवाएं बहुत कर ली, अब खाली हुई है। इस खालीपन को कैसे भरे? कुछ तो चाहिए, कुछ तो करेगा वो। फिर सोचते हैं ये विकार बहुत शक्तिशाली है, ये चूहा घूरता है, शायद कोई दैवी शक्ति है इस चूहे में, जो हम इतने बहादुर होने के बाद भी हमारी तलवार ही टूट जाती है ज्ञान की। रात रात भर संघर्ष करते हैं, चौथा मनन, मनन। बाबा ने कहा केवल रिपीट नहीं करना है। मुरली पड़ी, रिपीट की, रिपीट नहीं करना है। क्या करना है? सागर की लहरों में लहराना है। क्या करना है? रत्नों से खेलना है। क्या करना है? अमूल्य बोल को अपने में समाना है, तो महान बनेंगे, तो ज्ञान के खजानों के मालिक बनेंगे। ज्ञान के खजानों के मालिक बन जाओ, इस नशे में रहो। चिंतन, बुद्धि सारा दिन ज्ञान के चिंतन में बिजी रहे। रत्न दिए हैं, खेलो रत्नों से। कुछ दिन पहले स्लोगन था, मिट्टी से नहीं खेलो, ज्ञान गुण शक्तियों से खेलो। मिट्टी से बहुत खेल लिया, मिट्टी को बहुत हाथ लगा लिया, मिट्टी को बहुत भोग लिया, और क्या मिला? मिट्टी से दुख, फ्रस्ट्रेशन। सारी शक्तियां मिट्टी ने छीन ली, इस देह की मिट्टी ने। मनन, रोज की मुरली से पॉइंट्स निकालने हैं जिन पर मनन किया जाए। कोई भी एक पॉइंट उठाना है, जैसे कल था बाजोली, बाजोली पर चिंतन करो। जैसे परसों था काम कटारी, काम को हिंसा क्यों कहा गया, चिंतन का विषय है। किन किन चीजों को काम मार देता है, यह हिंसक क्यों है, चिंतन का टॉपिक है। मुरली से पॉइंट्स निकालने हैं जिस पर बैठकर बीच बीच में चिंतन कब करना है। सेवाओं के बीच सेवाएं चालू है, सेवाओं को नहीं छोड़ना है। सेवाएं करते हुए ही बुद्धि चिंतन में बिजी रहे। जब समय है, वेट कर रहे, बस में है, नीचे जा रहे, खाली समय है, इंतजार का समय है, उस समय पर कुछ कुछ पॉइंट्स सुबह ही नोट करके रखनी है कि इन पॉइंट्स पर हमें सारे दिन भर चिंतन करना है। लक्ष्य दे दिया सुबह सुबह मन को, इसलिए वो बिजी रहेगा। नहीं तो यहां वहां की बातें, व्यर्थ की बातें बुद्धि में घूमती रहेगी। एक टॉपिक रोज स्वयं को देना है, जैसे कहा काम हिंसा क्यों है, कौन सी चीजों का मर्डर करता है वो, काम आदि मध्य अंत दुख देता है, कौन सा आदि, कौन सा मध्य, कौन सा अंत, किसका आदि, किसका मध्य, किसका अंत, किसकी बातें चालू है, क्रिया की या युग की, चिंतन करना है। मुरली से पॉइंट्स उठाने, मन को कहना कि आज सारे दिन भर इस टॉपिक पर चिंतन करना है, ताकि बुद्धि उसमें बिजी रहे। तो चौथी बात है मनन। पांचवा पॉइंट शुभ चिंतक, अर्थात जो शुभ चिंतक है वो व्यर्थ और परचिंतन से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। उनके पास फुर्सत ही नहीं है, एक सेकंड भी फुर्सत नहीं है, बुद्धि में जगह ही नहीं है, समय भी नहीं है और बुद्धि में जगह ही नहीं है। किसने क्या किया, कौन क्या करता है, व्यर्थ की बातों में जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, लेन देन नहीं, लेना देना नहीं। इस ज्ञान में सबसे बड़ा प्रिंसिपल है इंग्लिश में माइंड योर ओन बिजनेस। वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो भाई क्या करता है, ये बहन, ये माता क्या करती है, इस कुमार का क्या हुआ, व्हाट इज दैट टू यू। इन सब चीजों में जाना ही नहीं है। यहां आए थे तपस्या करने, तो पांचवी बात परचिंतन से मुक्त। स्वचिंतन अर्थात व्यर्थ चिंतन से मुक्त। स्वचिंतन अर्थात जरा भी मार्जिन नहीं, जरा भी टाइम नहीं इधर उधर की बातें सुनने के लिए, और बातें बहुत सारी सुनाई देगी, परंतु जो काम की है वो रख लो, जो काम की नहीं है उसको छोड़ दो। हजार बातें कान पर पड़ेगी, फिल्टर करना है। सिक्स्थ पॉइंट, सास राज। बाबा ने कहा तुम सबको सास बहुत पसंद है, म्यूजिक, परंतु केवल सास के मजे में नहीं रहना है, राज में जाना है। चौथी पॉइंट, और ये पॉइंट मिली जुली है, ज्ञान के गुह्य गुह्य रमणीक राजों को जानना है। क्या राज है, क्या कहना चाहता है वो, क्या उसके मन में है, व्हाट इज द माइंड ऑफ गॉड, भगवान का मन, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ गॉड, उसकी क्या भावनाएं हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड, भगवान का स्वभाव क्या है, वो क्या बोलता है, क्यों कभी कभी लगता है वो जो बोल रहा है उसमें विरोधाभास है। कुछ दिनों पहले एक मुरली थी, तुम्हें सुन अवस्थाओं में चले जाना है, अशरीरी हो जाना है। कुछ दिन पहले मुरली थी, तुम्हें सुन बिल्कुल नहीं होना है, सुन होना अर्थात सोना। और उसी के तीन चार दिन पहले मुरली थी, शरीर से डिटैच हो जाओ, सुन अवस्था का ये समय है। विरोधाभास, क्या राज है, सुन के क्या अर्थ है, तब अर्थ क्या था और अब अर्थ क्या है। तब अर्थ अशरीरी था, अब अर्थ नींद है, क्योंकि साकार मुरलिया देश काल परिस्थिति को देखकर चली है, व्यक्ति कौन बैठा है सामने। कभी कभी बाबा कह रहे हैं तुम कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, सीधा शिव बाबा से कनेक्शन है, ऐसे बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद सभा में कोई ऐसा बैठा है जो ब्रह्मा को मानता ही नहीं, इसके लिए ऐसी मुरली चली। फिर कभी कोई ऐसी मुरली चल रही है जो केवल ब्रह्मा से ही अटैच है, बाबा ने कहा इसको याद किया तो नरक में जाओगे, तुमको याद एक निराकार को करना है बस। क्योंकि सभा में वैसा एक कोई बैठा था दूर, जो बाबा ने देख लिया, बाबा ने कहा तुमको गीत संगीत कविताओं से परे, आवाज से परे निकल जाना है उस परम धाम में। और फिर कभी उदास हो जाओ तो तुम्हारे पास अच्छे अच्छे रिकॉर्ड होने चाहिए, गीत होने चाहिए। हो सकता है कभी सभा में ऐसा व्यक्ति बैठा है जो दिन रात गीत कविता ही करते रहता है, जिसको बस गीतों में ही इंटरेस्ट है, कहां प्रोग्राम हो और मेरा गीत हो, गीत गाया उसके बाद प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, बस गीत से लेना देना है। बाबा ने कहा ये गीत संगीत से परे जाओ। और कभी कभी ऐसे उदास है कि कोई रस ही नहीं है, ब्राह्मण जीवन में मुरली का इंटरेस्ट समाप्त हो गया है, जीरो, केवल नेमिनाथ, दिखावे के लिए। कोई ये ना कह दे कि तुम मर गए, ब्राह्मण जीवन में इसलिए मजबूरी से मुरली क्लास में मौजूद है, उनके लिए गीत होने चाहिए। तो मुरली को समझने के लिए, उसके राजों को समझने के लिए क्या जरूरी है, मनन। बाबा ने कहा मनन करते करते मगन हो जाओ, और जहां मगन अवस्था है वहां पर विघ्न नहीं आएंगे। जो अवस्था योग से प्राप्त हो सकती है वही ज्ञान की चिंतन, ज्ञान के चिंतन करते करते मगन अवस्था से भी प्राप्त हो सकती है। दोनों एक स्टेजेस है, चाहे ज्ञान का मार्ग लो या योग का मार्ग, योग ही योग, योग ही योग, और बहुत ऊंची अवस्था। दूसरा मार्ग है ज्ञान का मार्ग, ज्ञान मार्ग, ज्ञान के चिंतन करते करते मगन हो जाओ, और उस मगन अवस्था में भी वही आनंद है जो योग की परमधाम की स्थिति में आनंद है। तो छठवां पॉइंट, राज, सास। तो सास के साथ क्या हो, राज। हर मुरली सुनते समय ये सोचना इसमें क्या राज है, आज मुझे कौन सी नई बातें पता चलने वाली है, सीक्रेट्स। आज की मुरली में ऐसी कौन सी नई बातें आने वाली है जो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, कभी विचार नहीं की। कौन सी नई पॉइंट, कुछ दिन पहले मुरलियों में था जब बारिश नहीं होती है तो यज्ञ करते हैं, और जब मूसलाधार बारिश होती है तब क्यों नहीं यज्ञ करते यज्ञ बारिश को रोकने के लिए, भगवान ने प्रश्न पूछा था मुरली में। ऐसे कुछ कुछ नई पॉइंट्स, नई बातें मुरलियों में आती रहती है, कैच करना है, बुद्धि में रखना है, चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, चिंतन करना है। बुद्धि इसी में बिजी रहेगी तो स्थिति ऊपर जाएगी, नहीं तो व्यर्थ का अंबार लगा पड़ा है। यहां जंगल ही जंगल है पर चिंतन और पर दर्शन और गॉसिप्स का, अफवाहों का। सातवीं पॉइंट, बाबा ने कहा सोचना और देखना शुभ हो। सोचना और देखना कैसा हो? शुभ हो। ये जब शुभ होगा तो दृष्टि वृत्ति भी शुभ होगी और इसकी आदत पड़ जाएगी। और ऐसा जब होगा तो कमजोर आत्मा कोई आएगी उसको भी पंख दे सकेंगे उमंग उत्साह उल्लास के। ये काम करना है, आदत डालनी है शुभ देखने की, प्योर देखने की, पॉजिटिव देखने की। हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी समाई हुई है। जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में जूते बनते हैं और जूते बनाने वाली इस कंपनी ने अपने दो सेल्समैन को एक गांव में भेजा, बिहड़ गांव, किसी दूर क्षेत्र में वो गांव है। तो पहले सेल्समैन ने वहां से फोन किया अपने बॉस को कि इस गांव में कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, यहां पर कंपनी चालू करने का कोई फायदा ही नहीं है, यहां दुकान लगा के हम करेंगे क्या, क्योंकि इस गांव में तो कोई चप्पल पहनता नहीं, यहां तो घाटा ही घाटा है। दूसरा सेल्समैन फोन करता है अपने बॉस को कि एक बहुत अच्छी खबर है, इस गांव में कोई भी जूता नहीं पहनता है, हम इन लोगों को ट्रेन करेंगे चप्पल जूता पहनने के लिए और यहां हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा चलेगा। परिस्थिति एक ही है, काम भी एक ही है दोनों को, परंतु नजरिया अलग अलग है। जैसे एक गुरु अपने शिष्यों से कहता है इस झाड़ के बारे में कुछ कहो, पहला शिष्य कहता है यह झाड़ बड़ा क्रूर है, जब तक पत्थर नहीं मारते फल नहीं देता ये, इससे मैंने यह सीखा है कि दूसरों को भी पत्थर मारने चाहिए, जब तक उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करें वो हमको वो नहीं देंगे जो हमको चाहिए, उनके साथ में ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, केवल कहने मात्र से कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, डराना धमकाना चाहिए तभी वो देंगे। दूसरा शिष्य कहता है यह झाड़ कितना अच्छा है, खुद पत्थर सहन करता है और हमको फल देता है। परिस्थिति एक ही है परंतु टू व्यू पॉइंट्स, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। बाबा ने कहा शुभ देखना और शुभ सोचना इसकी आदत डालो, वृत्ति और दृष्टि इसकी आदत डालो। ये बड़ा काम है क्योंकि जन्म जन्म की कौन सी आदत है? निगेटिव की। हर चीज में निगेटिव कहां है, एकदम गहरे में समाई हुई है। थोड़ी मेहनत लगेगी, काम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ लगेगा, तो सभी स्थिर होके बैठेंगे। और अपनी आंखों के सामने उन लोगों को लाएंगे जिनके लिए मन में सम्मान कम है, घृणा है, नफरत है, बदले का भाव है, शुभ भावना नहीं है, जिन्होंने शायद कभी दुखाया है, दर्द दिया है, अपमान किया है, निंदा की है, ग्लानी की है, क्या उन सब के प्रति मेरे मन में शुभ भावना है? बाबा ने कहा इस संसार के एक व्यक्ति के प्रति भी यदि घृणा है तो तुम संपन्न नहीं बन पाओगे, इसलिए मैं मास्टर रहम का सागर हूं और ये सारी जो आत्माएं जो मेरे जीवन में आई मैं इन सबको माफ करती हूं बेशर्त, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। आठवीं पॉइंट, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाओ, जो होपलेस है उनको होप दो। ये नहीं कहो ये ज्ञान में नहीं चल सकते, ये पात्र नहीं है, ये ज्ञान में नहीं है, ये ज्ञान में कभी नहीं आएंगे। हम कौन है किसी को स्टैंप लगाने वाले कि ये ज्ञान में कभी नहीं आएगा? हम कौन है ये कहने वाले ये कलराठी जमीन है? हम कौन है ये कहने वाले? जिस पति ने 20 साल तक अपने पत्नी का विरोध किया और उसको सताया प्यूरिटी के लिए, एक दिन वो भी ज्ञान में आ गया। अर्थात जब वो सता रहा था तब भी देवकुल की ही आत्मा थी। तो ये नहीं सोचो ये ज्ञान में नहीं है, ये ज्ञान में नहीं चल सकेंगे, ये पात्र नहीं है। बाबा ने कहा जो कमजोर है, जो ना उम्मीदवार है उनको उम्मीदवार बनाओ, जो दिल शिकस्त है उनको क्या करो, क्या करो, दिल खुश मिठाई खिलाओ, और जो लंगड़े हैं उनके क्या करो, उनके टांग दो सहारे की, क्योंकि आत्मा निर्बल हो चुकी है। ये सोचना ही कितना मुश्किल है, कामचित बन जाए, क्रोध मुक्त बन जाए। कोई ग्रीड ना रहे, असंभव सी बातें हैं ये, जिनको लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा समझ लिया है कि ये नेचुरल है, ये होनी चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा, शारीरिक आवश्यकताएं है ये, ऐसा माना है। तो जो लंगड़े हैं उनको टांग दो, जो दिल शिकस्त हैं उनको दिलखुश मिठाई खिलो, जो ना उम्मीदवार हैं उनको उम्मीद दो, समर्थी दो, शक्ति दो, उनको चलाओ, उनको उड़ाओ। ये आठवीं बात, बड़ा काम है। नाइन्थ पॉइंट, लगभग सभी पॉइंट्स एक जैसी है। बाबा ने कहा जो बहुत कमजोर है उनको अपने शक्ति की विशेषता से शक्तिशाली सामर्थ्यशाली बनाओ, किसी से भी घृणा न हो, किसी से भी घृणा न हो, डिसलाइक, हेट्रेट। जो व्यक्ति सामने आ जाए तो मूड खराब हो जाता है, उसको देख लो तो संकल्प अपने आप चलने लगते हैं, क्योंकि उसके साथ कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई है, दर्दनाक, दुखी वाली। ये कार्य अवचेतन मन के तल पर करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि बहुत गहराई में नफरत समाई है। रोज रोज उस आत्मा को इमर्ज करके अनकंडीशनल माफी देनी पड़ेगी कि तुमने जो कुछ किया वो हिसाब था मेरा, तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, तुमने जो कुछ किया, अगर नहीं करते तो जीवन का ये पाठ मैं नहीं पढ़ता, ये डिग्री नहीं मिलती विघ्न विनाशक की, ये पेपर था जिसको पास किया, बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन था, सीढ़ी थी आगे बढ़ने की, तुम जीवन में आए तभी तो ये पता चला। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है एक टॉर्च लेकर आता है, और वो टॉर्च हमारे मन के अंधकार में किसी कोने पर उसका प्रकाश पड़ता है, और वहां जो छिपी हुई घृणा थी वो व्यक्ति बाहर निकालता है। हमें लग रहा था हम तो क्रोध मुक्त हो गए, एक सन्यासी 30 साल तक जंगलों में रहा, पहाड़ों पर रहा, और उसको लगा मैंने क्रोध को जीत लिया है, क्रोध अब है ही नहीं, किससे क्रोध जंगल में करे, कोई व्यक्ति नहीं है वहां पर, सोचता है चला आजमा लू। एक द्वार पर जाता है भिक्षा मांगने, वहां छोटा सा बच्चा रो रहा है, वो उस बच्चे को समझाता है शांत हो जाए, बच्चा नहीं मानता है, फिर समझाता है, फिर समझाता है, और फिर क्रोध आ जाता है उस बच्चे पर जो रुक ही नहीं रहा है। क्रोध कहां से आया? क्रोध अंदर ही था, किसी अंधकार में कोने में, वो बच्चा तो टॉर्च लेकर आया। इसके लिए हर वो व्यक्ति जो शिक्षा दे, समझानी दे, करेक्शन दे, सोचो ये टॉर्च है इसके हाथ में, जो मेरे ही मन के किसी अंधकार में कोने में जो छिपी वासना है, विकार है, तृष्णा है सांसारिक, उसको उजागर किया, अब मैं इस पर काम कर सकता हूं। इसके लिए इसका धन्यवाद। इसी में बाबा ने और एक बात कह दी, केवल इसको शुभ चिंतक नहीं समझना, इसको फर्स्ट स्टेज नहीं समझना केवल, परंतु मनसा में वाचा में संबंध संपर्क से आत्माओं की सेवा करना, अर्थात उनको भी शक्तिशाली बनाना, उनको भी शुभ चिंतक बनाना, यह है सेवा। एक सूफी फकीर ने अपने शिष्यों से हमेशा कहता था, मैं तुम कुछ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम परफेक्ट नहीं बन जाते, भूत की तरह तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, प्रेत की तरह, और एक बार जब तुम परफेक्ट बन गए तुमको दूसरे को पीछे लगा दूंगा प्रेत की तरह। Be perfect even as your father that art in heaven is perfect. Last point. शुभ संकल्प, शुभ बोल, शुभ कर्म, शुभ संबंध, शुभ जन्म, शुभ भाग्य की दशा, शुभ सृष्टि, शुभ स्वप्न, इतने चीजों में शुभ। साकार में यदि शुभ हो तो स्वप्न में भी शुभ होगा, शुभ सृष्टि हो, जिसको देखो शुभ दिखे, शुभ संकल्प, शुभ बोल, शुभ कर्म, शुभ संबंध, शुभ भाग्य की दशा, हमारा जन्म भी कब हुआ है, वो वेला कैसी थी, शुभ वेला थी, शुभ समय, शुभ जन्म, सब कुछ शुभ शुभ शुभ। शुभ संकल्पों के दीप जलाओ अपने अपने मन में, जग उजियारा हो जाए जग में। विदेशियों से बाबा ने कहा कि एक एक तुम क्या करो, जगाओ, दीपमाला बनाओ, आत्माओं को जगाना है। मॉरिशस ग्रुप जगा वो सकते हैं जो स्वयं जगे हुए हैं। निर्विकारी वो बना सकते हैं जो स्वयं निर्विकारी है। कामजीत वो बना सकते हैं जिनको काम स्पर्श तक नहीं करता, जो निर्लिप्त है। दसवीं बात, हर चीज में शुभ 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 शुभ, सब कुछ शुभ हो जाए, जगना है। तो ऐसी दस बातें थी। एक और बात, एक प्रश्न है आप सब से, सोच के बताना उत्तर। एक झाड़ है, झाड़ पर एक युवक बैठा है, नीचे शेर है, झाड़ की डाली में एक सांप है, और नीचे तालाब है जिसमें दो भूखे मगरमच्छ है। बंदूक झाड़ के नीचे है, वहां शेर है, युवक बैठा है, और डाली है जिसमें सांप है, कैसे छूटे, चारों तरफ से खतरा है। कईयों को ये उत्तर पता होगा, पर हम जो उत्तर बताने वाले हैं वो कुछ और है। कैसे छूटेगा, अभी अभी सोच के बताओ। झाड़, युवक, डाली पर सांप, नीचे शेर, एक बंदूक और मगरमच्छ, क्या किया जाए? उत्तर दिया जाता है, वो सांप को पकड़ेगा हाथ से और शेर की ओर फेंक देगा, शेर थोड़ा सा तिलमिला जाएगा, पीछे हटेगा, तब तक नीचे उतरेगा, बंदूक लेगा, शेर को मार देगा, सांप भी चला जाएगा। ये उत्तर है। दूसरा उत्तर है क्या? ये पहला है विकल्प। दूसरा उत्तर है, वो बच्चा सो रहा है और ये स्वप्न है, वो युवक सो रहा है, उसको जगाओ, ना कोई झाड़ है, ना कोई सांप है, ना कोई शेर, ना कोई बंदूक और ना कोई मगरमच्छ, विस्मृति, निद्रा में है, इसके लिए ये सब भयानक भयानक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। देवभान की निद्रा है जिसमें सब कुछ भयानक दिखाई देता है, सो रहा है, उसको जगा दो, ठीक हो जाएगा सब अपने आप। तो दस बातें बताई, फिर से रिवाइज करेंगे। पहला, शुभ चिंतक बनना है, उसके दो आधार है, स्वचिंतन और शुभ चिंतन। दूसरा, स्वचिंतन की परिभाषा, अपने आदि और अनादि स्वरूप में स्थित रहना, उसका अभ्यास करना, उसकी ड्रिल करते रहना, एक एक घंटे में अपने आप को याद कराते रहना, जगाते रहना। अगर नहीं जागेंगे तो सामने सांप, नीचे शेर, बाजू में मगरमच्छ, और डरते रहेंगे सारे दिन भर, डरावने स्वप्न, अज्ञात भय, मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में कोई सेवाधारी मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर बीमार पड़ जाए तो कोई मेरी देखभाल करेगा या नहीं करेगा, ये ब्राह्मण परिवार मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा, कुमारों को चिंता, बीमार पड़ गए तो भोजन कौन बनाएगा, दोस्तों भोजन पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, स्वचिंतन। तीसरा, जैसे बाप श्रेष्ठ है मैं भी श्रेष्ठ हूं। चौथा, मनन करना है, रत्नों से खेलना, अमूल्य बोल को धारण करना, महान बनना और सागर की लहरों में लहराना। चौथा। पांचवा, व्यर्थ और परचिंतन से मुक्त, फुर्सत, अपने आप को खाली नहीं छोड़ना है दिन भर में, कोई 24 घंटे 50 मिनट बिजी है, 10 मिनट खाली छोड़ के रखा है और हाथ में मोबाइल है और उसमें नेट भी ऑन है, बस वहीं पर खत्म, खाली नहीं छोड़ना है। फुर्सत विकारों की जड़ है। छठवा, साज और राज, हर बात के राज को समझना है। सातवा, सोचना और देखना शुभ। आठवा, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार ये नहीं कहना कि ये ज्ञान में नहीं चलेंगे, इतने बार इनको कोर्स कराया बीच में छोड़ देते, मधुबन भी जाके आए, बाबा से भी मिले थे, फिर भी इनको धारणा नहीं होती है, छोड़ो इनको, छोड़ना किसी को ही नहीं है, छोड़ना ना अर्थात शुभ भावनाएं कम नहीं करनी है, शुभ भावनाओं में बहुत बल है, बहुत शक्ति है, पत्थर दिल भी एक दिन पिघल जाएगा। नौवा, कमजोरों को कमजोरी भूल कर बाबाने का, उसकी कमजोरी को याद नहीं रखो कि ऐसा है ये ऐसा है, कमजोर को देखने के बाद उसकी कमजोरी को भूल कर अपनी शक्ति की विशेषता से उसको समर्थशाली बनाना, कितनी ऊंची और कितनी बड़ी बात कहती है, शायद सारे जीवन की धारणा लगेगी इसमें, जीवन दांव पर लगाना पड़ेगा इसके लिए, पर भगवान कह रहा है तो सत्य ही होगा। और लास्ट पॉइंट, शुभ संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, दृष्टि, वृत्ति, जन्म, भाग्य की दशा, स्वप्न। यदि स्वप्न में गड़बड़ है तो जरूर सारे दिन भर में किसी न किसी श्रीमत की अवज्ञा हो रही है। यह मुरली पूरी होती है, माता से बाबा ने बात की, सेकंड पैराग्राफ, दाता, देने में ही क्या है, लेना है। पहले में बहुत सारे सामान दिए, भाग्य है, माया चोरी ना करे ये खजाना, तो आपको काम दे रहे हैं, माया कब कब चोरी करती है और कौन कौन से खजाने चोरी करती है, दूसरों के नहीं मेरे जीवन के, इस पर सोचना है अगले दो दिन जब तक मधुबन में है कि मेरे कौन कौन से खजानों को माया ने कब कब चोरी की और कैसे चोरी की, कौन से वो गुप्त द्वार से वो माया प्रवेश कर दी मेरे जीवन में, कहां से आई। फिर बाबा ने कहा रूहानी रंग में रहना है, रूहानी रंग उनको लग सकता है जो रूहानी संग में है, अर्थात किसी से भी मोह नहीं, पहले बच्चों में मोह था, बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चों की सेवा पूरी हुई, अभी दूसरों की सेवा चालू हुई और लाइन चालू है, लाइन लगी हुई है, इस संसार में किसी भी देहधारी में हमारा मोह ना हो। यदि हाँ मोह इतना अच्छा लगता है तो अपने मोह को सार्वजनिक बना देना है, सारे व्यक्तियों से मोह, यह दूसरा मार्ग है, सभी से मोह एक में है, अब सब में कर दो सार्वजनिक मोह, वो भी एक मार्ग है। नहीं तो ये मोह बहुत दुख देता है, बहुत पीड़ा देता है। बाबा ने कहा बंधन मुक्त माता अर्थात बंधन मुक्त। और फिर लॉटरी की बात कही, देने की बात कही, विदेशियों से बात की, हर एक का दीपक जगाना है जैसे तुम्हारा भाग्य का सितारा चमक रहा है। फिर दो प्रश्न हैं, क्या है प्रश्न? प्रसिद्ध बनने का आधार, होशियार बनने का आधार, क्या? दोनों प्रश्न मिलते जुलते, एक जगह सिद्धि पूछा एक जगह प्रसिद्ध कहा, ना अपने लिए कोई प्रश्न है ना दूसरों के लिए कोई प्रश्न है, और एक जगह कहा निर्माण और एक जगह कहा नम्र विनम्र और गुण ग्राहक। न जिद करनी है न सिद्ध करना है, ऐसे कैसे रूहानी नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे शुभ चिंतन करने वाली आत्माओं को, ऐसे बोलते जाओ क्या क्या सुना, ऐसे समर्थ आत्माओं को, ऐसे महादानी आत्माओं को, ऐसे ऐसे सहयोगी आत्माओं को, ऐसे निर्बल को शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे कमजोरी न देखने वाली आत्माओं को, ऐसे शुभ भाव शुभ बोल शुभ कर्म सब कुछ शुभ 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 करने वाली आत्माओं को, ऐसे राज को समझने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे सागर की लहरों में लहराने वाली आत्माओं को, ऐसे ज्ञान रत्नों से खेलने वाली आत्माओं को, ऐसे हर बोल को जीवन में अमूल्य बोल को जीवन में धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे मुरली केवल रिपीट करने वाली आत्माओं को नहीं परंतु मनन करने वाली आत्माओं को, मगन होने वाली आत्माओं को, माया जीत बनने वाली आत्माओं को, स्वचिंतन करने वाली आत्माओं को, ये कहने वाली नहीं मैं पुरुषार्थी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं माया जीत नहीं बन सकती, मैं सफलता नहीं पा सकती, ऐसा न कहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे चमकते हुए सितारे आत्माओं को, ऐसे जो दूसरों का दीपक जगाने वाली आत्माओं को, ऐसे जिद सिद्ध न करने वाली आत्माओं को, ऐसे नम्रचित विनम्र आत्माओं को, ऐसे गुण ग्राहक आत्माओं को, ऐसे ना अपने लिए कोई प्रश्न ना दूसरों के लिए कोई प्रश्न ऐसी आत्माओं को, ऐसे जो पहले चरणों की धूल थी चरणों की दासी थी और अब सिर का ताज है, जो पहले चार दीवारों में बंद थी अब विश्व की मालिक है, जो पहले खाली हाथ थी अब मालामाल है, ऐसी आत्माओं को डैश 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 ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।